सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के चौथे एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज हम सुनेंगे कि राज्य पाने के लिए दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र क्या करने वाले हैं, आखिर कणिक की सिखाई कूटनीति का धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव हुआ। मैं आपके इन सभी सवालों का उत्तर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने कणिक की कूटनीति सुनी। कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को ये भरोसा करा दिया था कि पांडव उनके लिए खतरा है। चलिए अब जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र क्या करेंगे। शुरुआत होती है दुर्योधन से, जो भीम के बल और अर्जुन की धनुर्विद्या को देखकर मन ही मन बहुत दुखी है। अब कर्ण, शकुनी सभी मिलकर पांडवों को मारने की इच्छा रखने लगे। उस समय चारों ओर केवल पांडवों की ही प्रशंसा हो रही थी। हर कोई केवल उनके राजा बनने की ही बातें कर रहा था, लेकिन लोगों की ये बातें दुर्योधन के हृदय को छलनी कर रही थी। उसी ईर्ष्या की आग में जलते हुए वह धृतराष्ट्र के पास आ पहुंचा। पिता को अकेला पाकर उसने पिता का आदर किया और फिर इस प्रकार कहा, पिताश्री, मैंने नगरवासियों को बातें करते हुए सुना है। वे आपका और पितामह भीष्म का अपमान कर रहे थे, युधिष्ठिर को राजा बनाने की बातें भी कर रहे थे। अब पितामह भीष्म तो इस बात को मान ही लेंगे, क्योंकि वे राज्य भोगना नहीं चाहते, लेकिन ये सभी लोग हमारा बुरा चाहते हैं। अगर युधिष्ठिर को राज्य मिला तो कल को उसके पुत्र को राज्य मिलेगा, और फिर उसके पुत्र को इस तरह पुत्र परंपरा चलती जाएगी और हमें कभी राज्य नहीं मिलेगा। आपके अंधे होने के कारण आपको राज्य नहीं मिला, और अब आपके पुत्र को भी राज्य नहीं मिल पाएगा। ऐसे तो हम अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे आने वाले समय में हम केवल अन्न से गुजारा करके जीने वाले नरक समान कष्ट को ना भोगें। अगर आपने पहले ही राज्य पा लिया होता तो आज हमारी यह दशा ना होती। अपने पुत्र की बातें सुनकर और कणिक के वचनों को स्मरण करके राजा धृतराष्ट्र दुविधा में पड़ गए। वे शोक से भर गए। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन सभी ने एक जगह बैठकर सलाह की, और फिर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई उपाय करके पांडवों को वार्णावत भेज दीजिए, जिससे हमें उनसे कोई भय न रहे। दो घड़ी विचार करने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा, पांडु ने जीवन भर धर्म का पालन करते हुए सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया था। विशेष रूप से मेरे प्रति तो पांडु ने हमेशा अपने मन में प्यार और सम्मान रखा था। वे इतने भोले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अन्य कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे, ज्येष्ठ, यह राज्य तो आपका ही है। पांडु के पुत्र भी वैसे ही धर्म परायण है जैसा स्वयं पांडु था। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात और नगरवासियों में भी अत्यंत प्रिय हैं। फिर किस प्रकार उन्हें उनके बाप दादाओं के राज्य से बलपूर्वक हटाया जा सकता है, वो भी ऐसे समय में जब उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा स्नेह से पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र और पौत्रों की भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। पांडु पूरे राज्य को अपने परिवार की तरह प्यार करते थे। पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब अगर हम उनके विरुद्ध कुछ गलत करते हैं तो वे विद्रोही होकर ही युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सबकी हत्या क्यों नहीं कर देंगे। दुर्योधन ने उत्तर देते हुए कहा, पिताजी, मैंने भी हमेशा प्रजा को प्यार, आदर, सत्कार दिया है। अब वे लोग मुख्यतः से हमारे सहायक होंगे, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है। आप किसी उपाय से ही जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वार्णवत भेज दें। जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ दोबारा यहाँ आकर रह सकती हैं। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है अर्थात गलत है। इसी कारण मैं इस बात को खुलकर कह नहीं पा रहा हूँ। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से ऐसे जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। पुत्र, मुझे नहीं लगता कि हमें पांडव पुत्रों के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए है। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, पितामह भीष्म तो सदा ही मध्य में रहे हैं, उनके लिए सब समान है। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा भी मेरी ओर है, जहाँ पुत्र होगा पिता भी उसी ओर रहेंगे, और जिस पक्ष में अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य होंगे उसी पक्ष में कृपाचार्य होंगे। वे अपने बहनोई द्रोणाचार्य का पक्ष कभी नहीं छोड़ सकते। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में बंधे हुए हैं। वे भले ही पांडवों का भला क्यों ना चाहते हों, लेकिन वे अकेले हमारे विरुद्ध कुछ भी करने योग्य नहीं है। पिताजी, मैं शोक में जल रहा हूँ। अब आप ही पांडवों को वार्णावत भेजकर मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर सकते हैं। अब धीरे धीरे दुर्योधन और उसके भाइयों ने धन देकर आदर सत्कार करके सभी को अपनी ओर करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के गुप्तचर प्रजा में आसपास के इलाकों में ये खबर फैलाने लगे कि वार्णावत बहुत सुंदर है और इस समय वहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया है। वह मेला इतना मनोहर और सुंदर है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने उस मेले से ज्यादा सुंदर और मनोहर मेला नहीं देखा होगा। इस तरह हर कोई यही बात करने लगा। यही बातें सुनकर पांडवों के मन में भी वार्णावत जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा धृतराष्ट्र ने यह बात जानते ही पांडवों के पास जाकर इस प्रकार कहा, बेटो, तुम लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं, अस्त्रों शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली है। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के हित में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वार्णावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वार्णावत में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुम्बियों और सेवकों के साथ वहाँ जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायों को रत्न और धन दो और देवताओं के समान कुछ समय के लिए वहां इच्छा अनुसार निवास करते हुए सुख प्राप्त करो। युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र के मन में चल रहे रहस्य को समझ गए थे, लेकिन विवश होने के कारण बहुत अच्छा कहकर उन्होंने उनकी बात मान ली। इस घटना के बाद युधिष्ठिर ने सभी को बुलाकर बड़े भारी मन से इस प्रकार कहा, हम पांचों भाई हमारी माता सहित वार्णावत में लगे विशाल मेले में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। आप सभी लोग प्रसन्नचित होकर हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। आप सभी के आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश भी नहीं होगा। युवराज युधिष्ठिर के वचन सुनकर सभी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पांडु कुमारो, तुम्हारा हमेशा कल्याण हो, तुम्हारा हर जगह हित हो, सम्मान हो। इसके बाद सभी पांडवों का स्वस्ति वाचन किया गया, वे प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। अब जानते हैं कि इस समय पापी दुर्योधन के मन की क्या दशा है। जैसे ही दुर्योधन को यह समाचार मिला कि सभी पांडव वार्णावत जा रहे हैं, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने षड्यंत्र पर कार्य करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उससे कहा, पुरोचन, जिस तरह यह धन धान्य से संपन्न राज्य मेरा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी है। अब समय आ गया है कि तुम इस राज्य की रक्षा के लिए मेरा सहयोग करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे एक गुप्त बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जैसे कहूँ तुम वैसा ही करना। पिताश्री ने पांडवों को वार्णावत जाने की आज्ञा दे दी। वे वहां जाकर मेले में घूमेंगे फिरेंगे, तुम आज ही वहां पहुंच जाओ। वहां जाकर तुम एक ऐसे भवन का निर्माण कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों और वह बहुत सुरक्षित हो। वह भवन बहुत सुंदर दिखना चाहिए। उस भवन की दीवारों में ऐसे द्रव्य इस्तेमाल करो जो आग भड़काने वाले हों। घी, तेल, चर्बी सब मिलाकर उस भवन की दीवारों का निर्माण कराओ। उस भवन के आसपास सारी वह चीजें उपलब्ध होनी चाहिए जिनसे आग भड़काई जा सके। ध्यान रहे कि पांडवों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए है। उस भवन में हर साधु सामान ऐशो आराम होना चाहिए ताकि सभी पांडव वाणावत जाकर उसी भवन में निवास करें। आग में जलकर पांचों पांडव और कुंती देवी का अंत हो जाएगा और सभी को लगेगा कि भवन में लगी आग में जलकर सभी पांडव और उनकी माता मर गए। आखिर अब पुरोचन क्या करेगा? राजा धृतराष्ट्र की बातों पर शक होने के बाद भी क्या युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उस भवन में निवास करेंगे? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।